उसके लिए तैयार करता है इंसान को इम्तिहान डाल के। आप देखें, अच्छा इससे देखें, क्या एक नर्सरी के बच्चे से मास्टर्स का इम्तिहान लिया जाता है? नहीं, उससे नर्सरी का लिया जाएगा। फिर वो नर्सरी से फर्स्ट ग्रेड में आता है तो फिर फर्स्ट ग्रेड का लिया जाता है, फिर सेकंड ग्रेड में आता है तो उसका लिया जाता है, फिर वो और प्रमोट होकर तीसरे में चला जाता है तो तीसरे का लिया जाता है। आगे से आके जितने बड़े बड़े दर्जे होते जाते हैं, जितने ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं, जितना बड़ा दर्जा होता है ना, इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसलिए इतने बड़े इम्तिहान थे, दर्जे तो इतने बड़े थे, और अल्लाह ने और बड़े दर्जे देने थे इसलिए और बड़े इम्तिहान। जाहिर है, मास्टर से नर्सरी वाले का इसलिए नहीं इम्तिहान लिया जाता कि मास्टर को मास्टर के लेवल का इम्तिहान देना तो वो पीएचडी तक पहुंचेगा, है ना। मैट्रिक के तालिबे इल्म से थर्ड ग्रेड का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर वो टेंथ ग्रेड का इम्तिहान देगा तो इलेवंथ में जाएगा, थर्ड का इम्तिहान दे के वो इलेवंथ में नहीं जा सकता। समझे इस बात को, इम्तिहान बड़ा बड़ों का ही होता है। अल्लाह ताला जब बड़ा दर्जा देना चाहता है तो बड़ी आजमाइश डाल देता है, जब बड़ा इनाम देना चाहता है तो बड़ी आजमाइश डालता है। और कई लोग इम्तिहान से इतना डरते हैं, इतने खौफजदा रहते हैं, कहते हैं इम्तिहान ना हो। आप अपनी क्लास में ही देख लें, सुभान अल्लाह, बहुत सारे लोग अभी तक इसलिए लिसनर बैठे हैं, बस हमें टेस्ट के बहुत डर लगता है। तो टेस्ट नहीं लिया तो फिर देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टेस्ट ना होता तो वो इब्राहिम खलीलुल्लाह ना बनते, ठीक है, अल्लाह के दोस्त ना बनते। ये आजमाइश ही है जो इंसान को बुलंद दर्जे अता फरमाती है, ये आजमाइशों की भट्टी से गुजरना पड़ता है इंसान को तो ऊपर चढ़ सकता है। अगर आप नीचे ही रहना चाहते हैं इस डर से कि नहीं आजमाइश ना, टेस्ट ना ले लें कहीं हमसे, तो आप अपने बच्चों को भी फिर टेस्ट ना दिलाया करें, सारी जिंदगी उनको नर्सरी में ही रखना, ठीक है ना। ये ना हो कि वो कहीं प्रोमोट हो जाए। इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्यों दिलाती हैं उनको टेस्ट, क्यों उनके ऊपर एक मुश्किल डालती हैं? ये आपको भी पता है कि मेरे बच्चे को ये कहाँ तक पहुंचाएगा इम्तिहान, इसीलिए आप उसको इम्तिहान देने देती हैं। चार पांच साल के बच्चे भी इम्तिहान दे रहे होते, वो अपने लेवल का देते हैं, आपके अपने लेवल के इम्तिहान, लेकिन हम क्यों इम्तिहानों से ऐसा घबराते हैं कि साल हा साल तक लिसनर बने बैठे रहते हैं, टेस्ट बस टेस्ट से बड़ा डर लगता है। आप एक टेस्ट ना लें तो फिर हम स्टूडेंट बन जाएंगे, तो फिर वो स्टूडेंट ही किस काबिल जो टेस्ट से घबराए, वो तो स्टूडेंट ही नहीं है जो टेस्ट नहीं देता, क्योंकि प्रोमोशन उसकी तो है ही नहीं। तो टेस्ट आपकी काबिलियत को जानने के लिए, आप कितने काबिल हैं। देखें, एक हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मर्द और औरत की जान, औलाद और माल पर बराबर आजमाइश आती रहती है। किस पे आती रहती है? कभी उसकी अपनी जान में आती है, कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कोई और परेशानी आ गई, कभी कोई सदमा आ गया, कभी कोई आ गया, कभी औलाद में इंसान कोई सदमा देख लेता है, कभी उनकी कुछ ऐसी नाफरमानियां हैं, कभी कोई उनकी ऐसी कभी दीन से दूरी, या कभी और कोई उनकी तरफ से ऐसी परेशानी इंसान को आती है, उसमें इंसान आजमाया जाता है। कभी माल में आजमाइश आ जाती है, माल कभी डाका पड़ गया, चोरी हो गई, जॉब चली गई, बिजनेस खत्म हो गया, तो बराबर आजमाइश आती रहती और इनसे ना उसके गुनाह धुलते रहते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां तक के वो सुभान अल्लाह, वो अल्लाह को इस हालत में मिलता है कि फिर इस पे कोई गुनाह ही नहीं होता। अल्लाहु अकबर, कि वो ऐसे धुल जाता है, ऐसे क्लीन हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक कांटा भी मोमिन को चुभता है तो उससे क्या होता है, उसके गुनाह झड़ते। तो देखिए, जब बराबर आजमाइश आती रहती है इंसान के, लो हम ही रह गए आजमाइशों के लिए, कभी हमें ये इसमें आजमाइश, कभी इसमें आजमाइश, कभी इसमें आजमाइश, अरे ये आजमाइश तो पाक कर रही थी। कि फिर इंसान अल्लाह से किस हालत में मिलता है, यानी जब अल्लाह ताला के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, हाँ अल्लाह, उस पे कोई गुनाह ही नहीं होगा। कितनी प्यारी हालत है। और दुनिया की ये फिर जो आजमाइशें, ये कितनी हल्की हैं आखिरत के अजाबों के मुकाबले। कितने सस्ते छूट गए अगर यहीं पे सारे गुनाह जिसके धुल गए, कितना सस्ता छूट गया। आप देखें जिसको अल्लाह ताला किसी आजमाइश में नहीं डालता, जिसको अल्लाह ताला किसी ऐसी मुश्किल में नहीं डालता, और वो गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, करता चला जाता है, अल्लाह ताला उसको पकड़ता ही नहीं, तो क्या होगा? ये तो अल्लाह ताला की उसके साथ भलाई नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये तो गुनाहों से लदा फंदा जब वहां पहुंचेगा फिर सोचे क्या हाल है, तो वहां के अजाब बर्दाश्त करना क्या आसान है? तो जब आजमाइश आए ना, समझ लें अल्लाह ने हमें अभी भुलाया नहीं है, ये ना आए तो तब फिक्र होनी चाहिए कि कहीं अल्लाह ने हमें भुला तो नहीं दिया। कि मैंने आपको अभी हदीस क्या सुनाई है, जिस ग्रोह से अल्लाह मोहब्बत करता है उनको आजमाइशों में डालता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी तो आजमाइश में डाला, तो फिक्र तब करें जब आजमाइश ना आए, अल्लाह मुझे कहीं भूल तो नहीं गया कि वहां के अजाबों के लिए मुझे रख लिया। और बाज औकात अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों की कमजोरियों को धोने के लिए उनको मुश्किलात में डालते, आजमाइशों में डालते, ताकि जो है ना ये इसकी कमजोरी धुल जाए, क्योंकि इंसान निखर आता है। जो इंसान की सलाहियतें इम्तिहान के वक्त सामने आती है ना, वो वैसे नहीं आती। एक कोई जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सारे कहते हैं हम ईमान वाले, बड़े बड़े दावे करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब टेस्ट आता है ना तब पता चलता है कि किस तरह से मैं परफॉर्म करने के काबिल हूं। और फिर लोगों की सलाहियतें ऐसी निखर के सामने आती है कि पता चलता है ओहो ये तो हीरा था, ये क्या चीज था। आप देखें तमाम अंबिया के ऊपर कैसी कैसी आजमाइशें, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें उनके ऊपर कैसी आजमाइशें, मूसा अलैहिस्सलाम पे कैसी आजमाइशें। पूरी सूरह कहफ में आप देखते हैं जो मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा, उसमें कैसी आजमाइशों की बात है। कहीं अल्लाह की कश्ती का तख्ता तोड़ रहे हैं, कभी लड़के को कत्ल कर रहे हैं, तो लोगों के नजदीक तो वो आजमाइशें ही है ना। अल्लाह ताला लेकिन इंसान को किसी बड़ी आफत से बाल दफा निजात दिलाने के लिए उसके ऊपर ऐसे गम भेज देता। तो आजमाइश के वक्त एक बात जरूर याद रखें, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, अल्लाह ताला किसी पे इसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर बंदा आजमाइश में खुद कामयाब होना चाहता हो और पूरे इरादे और हिम्मत के साथ उसका सामना करे, तो याद रखिएगा अल्लाह ताला की मदद जरूर आती। देखिए ना मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी, उन्होंने जब बेटे को दरिया में डाल दिया था, लेकिन आखिर माँ थी, उनका दिल बेकरार हो गया, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, और मूसा की वालदा का दिल बेकरार हो गया, और करीब था कि वो मूसा के राज को जाहिर कर देती अगर हम उसके दिल को ना संभाल। सूरह कसस में है। तो याद रखिए जितनी सख्त आजमाइश होती है और इंसान उसमें जितनी साबित करनी दिखाता, अल्लाह की तरफ से मदद भी उतनी ही बड़ी आती। तो अगर हम ये बात समझ लेना सब कि दुनिया इम्तिहान का, यहाँ पे इम्तिहान हो के रहेगा, ये दुनिया खोने पाने कामयाबी नाकामी खुशी गम इसकी जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान की जगह। हम तो यहीं पे सारे हमने पैमाने लगे, फलाना कामयाब फलाना फेल फलाना अच्छा रह गया फलाना बिल्कुल दुनिया में नाकाम हो गया, ये यहाँ पे थोड़ी ये मयार है, यहाँ के थोड़ी ये पैमाने, ये तो इम्तिहान का है। यहाँ गम इसलिए आते हैं कि इंसान अल्लाह ताला की जन्नत को छोड़ के दुनिया को अपना मुस्तकिल घर ना समझ बैठे। अल्लाह ताला इम्तिहान में डाल देते हैं, इंसान फिर अल्लाह को याद करने लगता है, तो अल्लाह ताला बेहिसी की नींद से जगाने के लिए भी इम्तिहान भेज देते हैं। तो ये बात याद रखिए कि दुनिया जन्नत नहीं बन सकती, असल मसला ही तब है सारे गमों की जड़ पता है क्या है? कि हम इस दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं। इसीलिए जब हमारी मर्जी का कुछ नहीं होता या हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती या जैसे हम चाहते हैं हमारी चाहत के मुताबिक कुछ नहीं होता तो हम गम से निढाल हो जाते हैं। हालांकि ये दुनिया जन्नत नहीं है, ये तो इम्तिहान है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। अल्लाह ताला ने बता दिया इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है, किस लिए मैंने जिंदगी को पैदा किया। फिर भी हम इसको जन्नत बनाने की में कोशिशों में लगे हुए दिन रात, और सारा दिन रात हमारा क्या एक ही काम होता है, जब आजमाइश आती है तो गम इतना हावी कर लेते हैं कि सारा वक्त रोना धोना शिकवे शिकायतें अपनी मजलूमी को जाहिर करना, ये बस सारा वक्त यही करते रहते। और इस तरह से नहीं करते कि मैं इस इम्तिहान से सीखूं, इसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया दुनिया के मामले में उसको देखो जो तुमसे नीचे है, उनको ना देखो जो तुम्हारे से ऊपर है। अगर इस तरह से करेगा ना इंसान तो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझना शुरू हो जाएगा। हाय फलाने के पास तो इतना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, हाय मैं तो लूट गई, मैं तो मारी गई। तो याद रखिए हमेशा आजमाइश को कभी मांगे नहीं, लेकिन आजमाइश आ जाए तो उसमें साबित कदमी से रहें। हमेशा गम को इस तरह से तारी ना कर लें कि आप कुछ करने के काबिल ना रहें, सबर का मुजाहरा करें। अपनी जिंदगी के उन दिनों को याद करें जब अल्लाह ताला ने आपको कितनी मुश्किलों से निकाला, जब अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इनामात किए। तो ये याद करने से ना ईमान मजबूत होता है, दिल को ये यकीन होता है कि अल्लाह मेरे लिए हर हाल में काफी है, अल्लाह ने जो पहले किया था वो अब भी कर सकता है, क्योंकि उसकी कुदरत अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर। तो मुश्किलात से भी वही मुझे निकाल सकता है, परेशानियों से भी निकाल सकता है, या आजमाइश भी उसकी तरफ से आई है, वही इससे निकालेगा। हम अल्लाह की नेमतों को जो हमारे ऊपर बेशबहा नेमतें हैं उनकी तरफ नहीं देखते, जिनकी बारिश सुबह शाम हम पे होती है। हम देखते हैं तो उस चीज में जिसमें हमें आजमाया गया होता है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो और कोई यानी रिस्क है, या वो कोई औलाद के कोई मसले मसाए, हमारे जहन पे बस वो ही हर वक्त हावी रहता है। वो जो अल्लाह ने तुम्हें इतनी और नेमतें दी हैं उनका हक कब अदा करोगे, उनकी शुक्रगुजारी कब करोगे? तो उनकी तरफ भी तो देखें। एक इम्तिहान आता है और हम बस उसी का गम मनाते रहते हैं। देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, वो तो गम नहीं मनाने बैठे, हाय मेरा घर छूट गया, हाय मेरे घर वाले छूट गए, मेरी फैमिली छूट गई, हाय मैं तो दर बदर हो गया, हाय मैं तो ये हो गया, वो तो कुछ कर ही ना सकते। फिर उन्होंने जो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आए, जब इम्तिहानों में पूरा उतरे हैं, कोई गम नहीं मना रहे। हम ये नहीं कहीं पे भी देख रहे कि वो कोई गम मना रहे हैं, वो कोई शिकवे कर रहे हैं, वो कोई शिकायतें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह अब बस नहीं हो गई, अब मेरा इम्तिहान इतना तूने ले लिया, बस नहीं हो गई। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, शायद हो सकता तुम किसी चीज को अपने लिए बुरा समझो, हालांकि उसी ने तुम्हारे लिए खैर रखी हो। इंसान सकरा हो शयम हुआ हुआ खैर उन्नकुम, हो सकता है तुम समझो कि मेरे लिए इसमें बुराई है, हाय ये क्या गम मेरे ऊपर आ गया, ये कौन सी मुसीबत मेरे ऊपर आ गई, बाकी सारे तो आराम से फिर रहे हैं, मेरा घर क्यों टूट गया, मेरे ऊपर क्यों बीमारी आ गई, मेरी जॉब क्यों चली गई, हमें रिस्क के मसले क्यों आ गए, मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हो गया, मेरे हस्बैंड का ये क्यों हो गया, हमारे यहाँ कोई फौदगी क्यों हो गई, हमें ये जुदाई का सदमा क्यों बर्दाश्त करना पड़ा। हम तो कितनी सारी कहते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें हो सकता है तुम किसी चीज को बुरा समझो लेकिन उसमें ही तुम्हारे लिए भलाई हो, तो क्यों ये क्यों नहीं बात समझ। पूरा कुरान हमें बताता है, जब हम बिया की स्टोरीज आती है ना, ये देखो अगर हम उस जगह पे होते तो हम सोचते हाय ये तो कितना बुरा हो गया, हालांकि उसमें ही उनके लिए भलाई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जैसे मैंने अभी आपको बताया कहानी, उसमें आप देखते हैं हर हर जगह पे उनकी भलाई थी। तो कुएं में ना डाले जाते तो मिस्र ना पहुंचते, है ना। तो कैद खाने में ना पहुंचते तो इतना बड़ा ओहदा ना मिलता। कितनी कितनी मिसालें दूं आपको, बेशुमार मिसालें। तो बस सारी बातों की एक बात है कि इम्तिहान है ना, हमारी ही सलाहियतों को निखारने के लिए, हमारी ही तरबियत करने के लिए, हमारे ही खोट को निकालने के लिए, हमें खालिस करने के लिए। ये अल्लाह ताला का हमारे साथ कोई बुराई का, अल्लाह माफ करे, बुराई का इरादा नहीं है। ये तो मेरे रब का हमें अपना बनाने का तरीका है। अरे अल्लाह वो हमें इम्तिहान में ना डाले तो हम तो कभी उसकी तरफ आए ही ना, यकीन करें। क्या ऐसा नहीं है? इम्तिहान आते हैं तो फिर हम रोते पीटते अल्लाह की तरफ चलते हैं, उसकी तरफ रुजू करते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, उससे करीब होते आते हैं। आपने नहीं ये नोट किया कि जब इम्तिहान आता है इंसान अल्लाह से और करीब हो जाता है, जो मोमिन होता है। बाकी कई लोग तो ऐसे भी हैं जो दूर हो जाते हैं, लेकिन जो मोमिन होता है, जिसको अल्लाह ने करीब करना है ना, उससे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला, तो उसको आजमा लेता है, तो उसको अपने करीब कर लेगा। इधर तवज्जो करो, तुम किधर दुनिया में फंसे हुए। आप देखते हैं हर इम्तिहान आपको और निखार देता है और अल्लाह से करीब कर देता है। आपको ये पता चलता है कोई सहारा सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह के सहारे के। जब उसकी तरफ आके, उसकी आगोश रहमत में आके इंसान पनाह लेता है ना, तो जो सुकून वहां पे मिलता है, उसकी रहमत की चादर जब इंसान को ढांप लेती है, जो सुकून वहां पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। ये सब चीजें आजमाइशों से ही तो पता चलती है। तो इससे हौसला पकड़ा करें कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को आजमाया। इतने बड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी भी आजमाइश हो गई थी। अच्छा, फिर और नंबर टू मतलब क्या है कलिमात से? कलिमात से मुराद शरीयत के अहकामात भी हैं। क्या कि शरीयत के अहकामात से अल्लाह ताला ने उनको आजमाया। अच्छा, क्या ऐसे भी होता है कि शरीयत के अहकामात से भी इंसान आजमाया जाता है? आप आजमाए जाते हैं शरीयत के अहकामात से? जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म आता है तो हमारा टेस्ट नहीं हो जाता? कैसे होता है टेस्ट? फिर आप क्या हम कहते हैं, लबैक कहते हैं, अल्लाह मैं हाजिर, अल्लाह मैं तैयार हूं करने के लिए, समय ना वाता ना कहते हैं कि अल्लाह मैंने सुन लिया, मैंने मान लिया। या आप कहते हैं समय ना वासा ना, हमने सुन तो लिया, हमने कहा मानना, हमने करना तो वही है जो हम पहले से कर रहे हैं। तो शरीयत का हर हुक्म भी इंसान के लिए इम्तिहान होता है ना। तो उनको भी शरीयत के अहकामात दिए गए। कैसे दिए गए थे? हमने पढ़ा ना सुहफ इब्राहिम व मूसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुहफ भी थे, उनमें उनके लिए शरीयत के अहकामात थे। मसलन बहुत से अकवाल इसमें मिलते हैं कि वो क्या अहकामात थे, क्या चीजें थी जिनका हुक्म इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया। ये चंद एक मैं आपके सामने रखती हूँ। कई जगह पे है कि 10 चीजों का हुक्म दिया गया, कई जगह पे है कि 30 चीजों का हुक्म दिया गया। बाहर क्या जो भी है उनमें आपको मैं बताती हूँ कि कुछ चीजों का उनको हुक्म दिया गया। जैसे अहकामात हज उनको बताए गए, मूछों को कम करना। अब मर्दों के लिए हमारे मुल्कों में तो मूछ रखना बड़ी चीज समझी जाती है कि वो कहते हैं मूछ नहीं तो कुछ नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, हमने उलट कर लिया ना। तो उनका था मूछ को कम करना। इम्तिहान हो गया ना, देखें आपका मन कुछ जाता है और अल्लाह का हुक्म कुछ और है। कुल्ली करना, नाक साफ करना, मिसवाक करना, सर के बाल मुंडवाना या रखवाना, तो मांग निकालना, नाखून काटना। अब देखें हमारे में से औरतों को मैं कहूंगी, औरतों के लिए, कई औरतों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ही क्या हो जाता है, नाखून काटना। अल्लाह का हुक्म है कि नाखून काटो, नाखून ना बढ़ाए जाए। और जब ये शरीयत का हुक्म आ जाए कि नाखून काटने हैं, क्योंकि ये फितरत के सारे काम है, तो नाखून काटने का जब मामला आता है तो उस वक्त क्या करते, नहीं तो ब्यूटी है ना ये, तो नाखून ना रखे तो फिर हमारे तो हाथ ही खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो इम्तिहान हो गया ना, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا تھا، ہماری بھی آزمائش ہوتی ہے، جتنے شریعت کے احکامات ہیں سب سے ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو ہم وہیں پہ گر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں ہمارے، تو ان کے اندر ہی ہم تو پاس ہی نہیں ہوتے، آگے کیا جانا ہے، کوئی بڑا امتحان کیا آنا ہے، نرسری کے نرسری میں ہی پڑھے ہیں آپ، یہ دیکھ لیں نا، عورتوں کا تو اتنا ہی امتحان کافی ہے آئی بروز بنانے کا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، لعنت کی گئی ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو یہ آئی بروز کو یہ چھیڑتی ہیں، جو اس کے بال اکھڑواتی ہیں، نوچنے والی ہوں اور نچوانے والی دونوں کے اوپر لعنت کی ہے، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں تو کیا ہو گیا، لعنت کے ساتھ ہی گھوم رہے ہیں، میاں کی نظر میں تو خوبصورت لگو نا، تو اس میاں کی نظر میں کیا خوبصورت لگے گی جب اللہ نے لعنت کر دی، تو کبھی لعنت پڑا ہوا بھی بندہ خوبصورت لگ سکتا ہے، یار یہ ٹیٹوز بنانا بھی اس حدیث میں، تو وہ بھی کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اپنے ناخن کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، ختنہ کرانا، بغل کے بال صاف کرنا، پیشاب پخانہ کے بعد استنجا کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار کرنا، طواف افادہ کرنا، یہ سارے ان کو حکم دیے گئے، ٹھیک ہے، تو کسی حکم پہ بھی سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے نو نہیں کہا، ویری ہارڈ، دیٹس ناٹ فیئر، یہ نہیں کہا، سب حکم آتے گئے اور وہ کرتے گئے، سوچ سکتے ہیں ہر حکم کے اوپر انہوں نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل فرمائی، تو وہاں پہ جہاں پہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، ان میں جو انہوں نے قربانیاں دیں گھر کی، اور اس راستے میں جو صبر کرنا تھا، وہ بھی بچوں کو چھوڑنا اور یہ سب، اور بچے کی قربانی، یہ سب چیزیں تو کی، اس کے علاوہ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آیا، ہر حکم کو انہوں نے لبیک فرمایا، ہر حکم کو انہوں نے مانا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرانے والے، سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے، سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے، سب سے پہلے مونچھیں کم کرنے والے، سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے ابراہیم علیہ السلام، سفید بال دیکھ کے انہوں نے پوچھا تھا اے اللہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ وقار اور عزت ہے، کہنے لگے پھر تو اے اللہ اسے اور زیادہ بڑھا دے، اسی طرح سب سے پہلے ممبر پہ خطبہ دینے والے، سب سے پہلے قاصد بھیجنے والے، سب سے پہلے تلوار چلانے والے، سب سے پہلے مسواک کرنے والے، سب سے پہلے پانی سے استنجا کرنے والے، سب سے پہلے پاجامہ پہننے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، چاہیے نا، اللہ اکبر، واقعی پھر وہ خلیل کہلانے کے لائق ہے، کیا خیال ہے، ہم تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ہی پورے نہیں اترتے، ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم بے شک میں اب آپ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام، دیکھیں جس نے اتنے کلمات کو پورا کیا، دیکھیں ہاں یہ اینڈ ریزلٹ نہیں میں نے پڑھا، اینڈ ریزلٹ کیا تھا، جب ساری آزمائشوں میں اللہ نے ڈالا یا یہ سارے احکامات شریعہ دیے، تو فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے پورا کر دیا ان سب کو، یعنی یہ کلمات آسان نہیں تھے، لیکن ابراہیم ہننا کی ضمیر جو ہے نا، ویسے تو جو زندہ ہو اس کے لیے جاتی ہے، لیکن یہاں پہ کلمات کی طرف کیوں جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ کلمات بہت مشکل تھے، بہت ہی احکامات مشکل تھے، یہ آزمائشیں بہت مشکل تھی، لیکن انہوں نے سب کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انعام میں ان کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا، للناس لوگوں کے لیے، آج دیکھیں سارے مذاہب والے ان کو کتنا احترام دیتے ہیں، کتنی عزت دیتے ہیں، ابراہیم کہہ کے پکارتے ہیں نا یہ لوگ، تو وہ بھی ان کو مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، کتنی ریسپیکٹ ہے ان کی، تو یہ سب کے امام بنے، سب کے رول ماڈل ہیں، سب ان کی طرف دیکھتے ہیں نیکی کرنے کے لیے، تو سبحان اللہ، دیکھیں اچھا امام، ایک اور بات، امام کس میں ہوتا ہے، ہدایت میں، علم میں، امامت کا تعلق کس سے ہوتا ہے، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام قالا، نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد میں سے، میری اولاد میں سے بھی اللہ امام بنائے گا، अच्छा देखें, इंसान वैसे कितनी इंसान की वो होती ना, चाहे पैगंबर हो या दूसरे इंसान, को अपनी औलाद की कितनी फिक्र होती है। उसको जब कोई भी भलाई मिलती है ना, उनको कहा अल्लाह ताला ने कि आपको इमाम बना रहे हैं, तो फौरन क्या कह रहे हैं, अल्लाह मेरी औलाद में से भी इमाम बनाए बनाएगा, अल्लाह वो भी इमाम बनेगी। तो जो भलाई इंसान को मिलती है, उसका दिल चाहता है मेरे बच्चों को जरूर मिले। फिर ये कैसे हो सकता है कि अगर किसी को दीन प्यारा है, अगर किसी को ये कुरान प्यारा हो, इसकी समझ आ जाए, आखरत की कामयाबी और नाकामी की समझ आ जाए, जन्नत और जहन्नुम की समझ आ जाए, फिर वो उसको अपनी औलाद के लिए ये ना चाहे कि उनको दीन मिले, फिर वो औलाद के लिए ये ना चाहे कि उसको जन्नत मिले, कामयाबी मिले आखरत की, कैसे हो सकता है? फिर उसको अपनी औलाद के लिए दुनिया से ज्यादा उसकी आखरत की फिक्र क्यों ना पड़े? जिसको खुद ये पता चल जाए, जब इंसान को खुद कोई चीज पता चल जाती ना, और उसको उस पे यकीन हो जाता है, तो वही चीज वो अपनी औलाद के लिए चाहता है। देखिए, जिनको जिनके दिल के अंदर माल की मोहब्बत भरी हुई है, अब जितना भी चाहे वो कुरान पढ़ रहे हैं या कुछ है, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना औलाद के लिए, बस यही होगी कि इनको भी बस माल मिल जाए। इनको जो जिसके ऊपर दुनिया छाई होगी, चाहे वो कितना ही अपने आप को दीनदार जाहिर करे, लेकिन वो दुनिया में इतना कुबाव है, और उसको दुनिया का ही शौक और इसी की मोहब्बत उसके दिल में, उसके दिल से जब दुआ निकलेगी औलाद के लिए, वो यही कहेगा अल्लाह इनको बस दुनिया दे दे, इनके कैरियर बन जाए, इनके ये कामयाबी हो जाए, वो हो जाए। क्योंकि उसके चाहे वो इसको डिनाई करे, लेकिन उसके जहन पे, उसके दिल पे दुनिया ही दुनिया गालिब है। तो इंसान जो अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगता है ना, उसमें आप देखें, जो भी आप अपनी औलाद के लिए मांगते हैं, उसके अंदर आप देखेंगी वो झलक होगी जो आपके दिल में है। आप देखना चाहती है ना आपके दिल में किस चीज की अहमियत है, देखें कि आप अपनी औलाद के लिए क्या दुआ मांगती हैं। अगर उनकी दुनिया ही मांगती रहती है और उसी की फिक्रें आपके ऊपर गालिब हैं, तो इसका मतलब अभी तक दुनिया निकली नहीं दिल से। मांगे दुनिया भी मांगे, ऐसा नहीं है, दुनिया की हसना पहले मांगी गई है, लेकिन अगर सिर्फ यही मांगती रहती है ना, तो वो यकीन जो दिल में होना चाहिए, वो ईमान जो होना चाहिए आखरत पे, वो नहीं है। इसका मतलब इंसान में जो ये पढ़ रहा है ना, वो ऐसे दिल में उतर नहीं रहा, वरना आपको जब आखरत के खसारे का पता चलता, तो आपकी सबसे बड़ी ये कोशिश होती है अल्लाह मेरी औलाद आखरत के खसारे से बच जाए, वहां के नुकसान से बच जाए, अल्लाह वहां का कोई आग उनको ना छू जाए कहीं। लेकिन अभी तक यही फिक्रे हैं कि अल्लाह इसकी जॉब ना चली जाए। वो जॉब जाना तो बहुत छोटी बात है, हाँ वो आग से ना बचा तो सबसे बड़ी नाकामी है। तो देख ले, ये है अपने आप को जांचने का तरीका। देखें अपनी दुआएं, देखें अपनी दुआओं में क्या मांग रही हैं, किसके गिर्द दुआएं घूम रही हैं। बाज लोग उमरा हज के लिए भी जाने लगते हैं, तो पीछे लोग यही दुआ करते हैं, बस वहां जाके ये दुआ करना, फलाने का रिश्ता हो जाए, फलां का ये हो जाए, फलां का वहां, ओहो ये दुनिया की जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, इसके ये इम्तिहान भी गुजर जाएंगे। जैसे ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो इस साथ इम्तिहान भी तो खत्म हो जाएगा, उसका क्या करोगे जो कभी नहीं खत्म होने वाला। तो वो कहने लगे वो मिन ज़ुर्रियती अल्लाह मेरी औलाद के लिए, वो भी इमाम बनेंगे, यानी नेकों के इमाम। कितना शौक है कि अल्लाह हमें देख के लोग नेकी करने वाले बन जाएं। इमाम वही होता है ना जो आगे आगे होता है, नेकी में आगे चलने वाले। कहा अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ला यनालु अहदे ज़ालिमीन, नहीं मेरा अहद, ये मेरा वादा जालिमों के साथ नहीं है। ए इब्राहिम, ये नहीं कि तेरी औलाद में से जो कोई ईमान भी ना लाए, जो कोई बागी हो, जो अल्लाह का नाफरमान हो, उसको भी इमाम बना दिया जाए। नहीं 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 ये मेरा अहद जालिमों के साथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी कोई हो, फिर भी अगर वो जालिम है, तो उसके साथ अल्लाह का कोई वादा नहीं है किसी ओहदे का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुफ्त में मिल गई ये इमामत, बताएं, उनको तो इतनी اپنی آزمائشوں سے نکلنے کے بعد ملی ہے اس بھٹی میں, اس آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنے کے بعد یہ عہدہ ملا امامت کا, تو باقیوں کو ایسے ہی مفت ہی مل جائے کہ بس وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں, پڑ پوتے ہیں, ان کی ذریت میں سے ہیں, ان کی نسل میں سے ہیں, ہم سید ہیں, ہم فلاں ہیں, صرف اس وجہ سے. ایسا نہیں ہوتا, اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلا, کوئی یہ نہ سمجھے میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں, میرے خالو فلاں, میرے چچا یہ, میرے دادا وہ گدی نشین, وہ فلانے, او کسی سے کچھ فرق نہیں پڑے گا جب تک اپنا عمل صحیح نہیں ہوگا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا جو اتنی خود آزمائشوں سے نکلے ہیں, ورنہ کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ابراہیم آپ کا کرنا ہی کافی ہے, بس آپ کی ساری اولاد ہی بخشی گئی, اب تو آپ نے اتنا کچھ کر لیا تو اب آپ کی اولاد کا کیا امتحان, بس یہ کہ وہ بھی بخشے گئے. نہیں نہیں نہیں, اللہ کے ہاں انصاف ہے, انصاف ہے اللہ کے. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے کیا کا ملا, اور اولاد جو کرے گی ان کو ان کا ملے گا. تو ہم کن بھول بھلائیوں میں ہیں بھائی, کہ فلاں ہمیں بچا لے گا, فلاں کے ساتھ ہم چل پڑیں گے, میری امی بڑی نیک تھیں, میری دادی بڑی نیک ہوا کرتی تھیں, میرے فلانے یہ ہوا کرتے تھے. ان کے اوپر آپ کیا فخر کر رہے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ملنا اگر آپ نے صحیح عمل نہ کیا تو, اور نہ ہماری اولادوں کو ہم سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر وہ سیدھے راستے پر نہ آئے. سمجھ آ گئی بات, دونوں چیزیں سمجھ آ گئی ہیں نا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به, ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن, قال إني جاعلك للناس إماما, قال ومن ذريتي, قال لا ينال عهد الظالمين.